वैसे तो आदित्य मेहर को लेकर पहले ही काफी संतुष्ट था। उसे महसूस हो गया था कि मेहर निशा से वाकई बहुत प्यार करता है, तभी तो वो उसकी चिंता करता है, उसे टोकता है, उसे सही राह दिखाना चाहता है। लेकिन फिर भी आदित्य चाहता था कि एक बार हर चीज उसकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाए। उसे मेहर की रिपोर्ट का इंतजार था ताकि वो पूरी तरह निश्चिंत हो सके। जब आदित्य ने मेहर और निशा की बातचीत को सुना, उसने जो देखा और समझा उससे वो भीतर से आश्वस्त हो गया। अब उसे मेहर सच में अच्छा लगने लगा था। फिर भी वो कुछ बातें साफ करना चाहता था। मेहर और निशा अब आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उधर आदित्य अपने कमरे से उठकर वापस फैमिली के पास लॉबी में आ गया। कहाँ रह गए थे आप? मनाल ने उससे थोड़ी शिकायत भरे लहजे में कहा। देखिए, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, मैं दूसरी कॉफ़ी मंगवाती हूँ। मगर बिना कुछ कहे मनाल खुद ही कॉफ़ी लेने चली गई। आदित्य भी उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। अरे, आप क्यों आ गए? मनाल ने चौंकते हुए कहा। मैं ला ही रही थी, आपको इतनी जल्दी क्या थी? जब इतने नौकर चाकर हैं तो तुम्हें खुद काम करने की क्या ज़रूरत है? कहते हुए आदित्य ने पीछे से उसकी कमर में बाहें डाल दीं। छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा किचन में? मनाल थोड़ी घबरा गई। मुझे लगता है नैना अंदर आ रही है, कहते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन आदित्य ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि और कस के पकड़ लिया। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम हर बार यही क्यों कहती हो कि कोई आ जाएगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, अपनी बीवी के पास आने के लिए मुझे किसी की परवाह नहीं। चाहे नैना आए चाहे मॉम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनाल मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं आदित्य को कभी कभी क्या हो जाता है। ठीक है, मानती हूँ आप किसी से नहीं डरते, मगर कॉफ़ी गिर जाएगी, मैंने कप में कॉफ़ी डाल दी है, कहीं ये फिर से ठंडी ना हो जाए। कोई बात नहीं, आदित्य हंसते हुए बोला, तुम्हारे बहाने मुझे सब पता है, चलो चलते हैं लॉबी में। वो दोनों कॉफ़ी के कप के साथ वापस सभी के पास आकर बैठ गए। उसी समय निशा और मेहर भी वापस आ गए। तो भाई, डिसाइड हो गया? निशा चहकते हुए बोली। मैं कल से ही फैक्ट्री ज्वाइन कर रही हूँ, कल से ही काम शुरू। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सच्ची खुशी। आदित्य ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है निशा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे एक वादा करो, तुम अच्छे से काम करोगी, मेहनत करोगी। याद रखो तुम किस खानदान से ताल्लुक रखती हो, बिजनेस हमारे खून में है, मेरी ससुराल में मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसा ना हो कि तुम वहां कुछ कर ना सको और मेरी इज्जत का कचरा हो जाए। वो कहते कहते मुस्कुरा पड़ा। नैना को ये बात कुछ खटकी। वो निशा से बोली, तुम्हारे लिए तो पापा एक अलग फैक्ट्री बनवा सकते हैं जिसमें तुम खुद मालकिन बनो, फिर तुम्हें किसी और की कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह काम करने की क्या जरूरत है? फिर वो मेहर की ओर देखते हुए कहने लगी, निशा तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती है, ये तो तुम्हारे लिए फायदे की बात है, कम से कम इसे किसी अच्छी पोस्ट पर रखो, इसके वहां काम करने से तुम्हारी फैक्ट्री की तो इज्जत ही बढ़ेगी, आखिर सबको पता है निशा कौन है। मेहर कुछ कहता उससे पहले ही धर्मपाल जी ने बात संभाल ली। नैना, उन्होंने शांत और ठोस आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी को वाकई कामयाब होना है तो थोड़ा ग्राउंड लेवल पर काम करना जरूरी है। मैंने खुद अपने पिता के कहने पर सबसे नीचे से काम शुरू किया था। असल जिंदगी को जानना जरूरी होता है, जितना ज्यादा वो सीखेगी उतना अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि निशा एक दिन जरूर कामयाब होगी, आदित्य और अधिराज की तरह वो भी मेरा नाम रोशन करेगी। वातावरण थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया, सब उस बात को लेकर सोच में डूबे। फिर बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। सब लोग देर तक बैठे, बात करते रहे और फिर डिनर के बाद सभी मेहमान लौट गए। डिनर के बाद धर्मपाल जी अकेले लॉन में टहल रहे थे। उन्हें अकेले देखकर आदित्य उनके पास आ गया। डैड, मैं देख रहा हूँ आप थोड़े सोच में हैं, सब ठीक तो है ना? अगर कुछ है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। पता नहीं क्यों, धर्मपाल जी धीरे से बोले, मन में एक बात आई है, कुछ सोच रहा था, नहीं जानता मेरी सोच कितनी सही है। क्या बात है डैड? आदित्य ने नजदीक बैठते हुए पूछा। मुझे मेहर निशा के लिए अच्छा लड़का लग रहा है, दोनों में दोस्ती है, समझ है, मुझे लगता है वो निशा के लिए एक सही जीवन साथी हो सकता है। आदित्य मुस्कुराया। मुझे भी वो सही लगा, लेकिन हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। निशा फैक्ट्री ज्वाइन करने जा रही है और मेहर भी अभी शुरुआत कर रहा है, हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं करें तो बेहतर है। बिल्कुल सही कहा, धर्मपाल जी बोले, जैसे मनाल के लिए तुमने सही फैसला लिया, मैं चाहता हूँ कि निशा के लिए भी हम सोच समझ कर आगे बढ़ें। एक जीवन साथी बहुत मायने रखता है, उसका सही होना जरूरी है। आदित्य सब समझ गया था। असल में धर्मपाल जी के मन में कहीं ना कहीं नैना और अधिराज की शादी को लेकर असंतोष था। चाहे वो लव मैरिज थी, मगर दोनों के बीच कभी भी सौहार्द नहीं बन पाया, हमेशा कुछ ना कुछ टकराव रहा। इसलिए अब वे चाहते थे कि जो भी रिश्ता बने वो गहराई और समझदारी से बने, जैसे मनाल और आदित्य का था, सच्चा, मजबूत और भरोसेमंद। अब वो यही चाहते थे कि निशा के लिए भी एक ऐसा ही रिश्ता बने।